मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 16 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रोहित कुमार, आप जमुई बिहार से हैं। राहुल कुमार, आपका गांव है नाथद्वार और जिला है समस्तीपुर बिहार। और नरेश शर्मा, आपका गांव है मुंदरी, जिला है कैथल हरियाणा। तो रोहित, राहुल और नरेश, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे थोड़ी एक जो तैयारी का हमारा जो एक तैयारी की हमारी जो एक सीरीज चल रही है रणनीति बनाने की सिविल सर्विस के बारे में, उसी पर चर्चा करूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा मुख्य विषय के तहत कि जो पढ़ाई होती है और जो तैयारी होती है उसमें क्या अंतर होता है, राइट, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास एक खबर है, उस खबर की थोड़ी सी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और ये खबर है डेफिनेटली कर्नाटक के चुनाव को लेकर, एक अवसर है जिसके आधार पर हम थोड़े से संविधान की बात कर सकते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुए, आपने देखा कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, राइट, जबकि हमारे संविधान के अनुसार सदन में बहुमत जिसका होगा वही सरकार बनाएगा। बहुमत का मतलब है 50% से अधिक, नॉट 50%, 50% से अधिक, याद रखिए। जैसे कर्नाटक में 224 सीटें हैं तो आधा का मतलब होता 112, लेकिन 112 में सरकार नहीं बनेगी, ये तो एग्जैक्ट 50% हुआ, मोर देन 50%, यानी कि 113, सीधी सी बात, अब आधा और चौथाई तो हो नहीं सकता है, तो 113 यानी कि 113 सीट जिसके पास होंगी उनकी सरकार बनेगी, राइट। मैं थोड़ा सा आपको संवैधानिक वो स्थिति बता रहा हूं जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जरूरी होती है कि आपको कैसे पढ़ना होता है। तो मित्रों, 113 सीट चाहिए। और याद रखिए एक बात और भी, मान लीजिए कि 224 सीट हैं लेकिन चुनाव 220 के लिए ही हुए हैं, किसी वजह से 4 सीट पर चुनाव नहीं हुए, जैसे कि अभी 222 के लिए हुए, 2 सीट पर चुनाव नहीं हुए, कोई भी रीजन हो सकते हैं, बहुत से रीजन होते हैं। तो अब अगर 222 पर चुनाव हुए हैं तो अब सवाल उठता है कि आधा, तो आधा ये 220 का आधा या 224 का आधा, क्योंकि चुनाव तो 220 में हुए हैं। तो याद रखिए कि जो आधा माना जाएगा वो सदन के कुल सदस्यों की संख्या, तो सदन के कुल सदस्यों की संख्या है 224। तो चाहे 220 पर चुनाव हुए हों, 210 पर चुनाव हुए हों, उसका सदन की संख्या से मतलब है, उसका चुनाव होने से मतलब नहीं है, उसका एक कारण है। देखिए, मान लीजिए कि चलिए 210 पर चुनाव हुए, 210 में आपने 110 हासिल कर लिए तो आपकी तो सरकार बन गई, ठीक है। जो 14 सीट के पर जो चुनाव नहीं हुए थे, बाद में चुनाव होंगे और पता लगा कि उन 14 सीट में आप एक भी हासिल नहीं कर पाए, तो अब तो 224 हो गए ना, 210 पर पहले चुनाव हुए थे, 14 पर अब चुनाव हो गए, 224 हो गए, लेकिन आप एक भी नहीं जीत पाए, तो आपकी सदस्य संख्या कुल कितनी रह गई, 110 ही रह गई, गड़बड़ हो गया। तो ये भी एक व्यावहारिक कारण है और उसका सीधा सीधा फार्मूला यही है कि आप कुल सदन के कुल संख्या का 50% से अधिक, पहली बात यह आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात मित्रों कि देखिए, बहुमत को बुलाया जाता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कर्नाटक के मामले में आप देख रहे हैं कि कोई बहुमत ही नहीं है, किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन अब इसमें 2-3 पेच हैं, देखिए अब इसी को समझिए, जिसके बारे में हमारा संविधान साइलेंट है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 163 में है, और उसमें जो वर्डिंग है जो इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए है वो मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। याद रखिए, मुख्यमंत्री का काम है कि वो राज्यपाल को सलाह दे, राइट, और मुख्य राज्यपाल की सहायता करे। और इसके बाद फिर 164 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 164 में, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। वर्डिंग देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि यहां देखिए जो कुछ भी है वो राज्यपाल ही है। एक बार मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति हो जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। संसद के बारे में भी प्रोविजन है और बकायदे विधानसभाओं के बारे में भी प्रोविजन है। अब आप देखिए कि सवाल अब यहां पर उठता है, तो फिर क्या राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है? यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन नहीं, केवल एक ही प्रोविजन से संविधान नहीं चलता है। जो संसदीय प्रणाली होती है और दूसरे दूसरे में ऐसा प्रोविजन है जिनके आधार पर बिल्कुल यही स्थापित होता है कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, और उसी को बिल्कुल इसी पैटर्न पर केंद्र में भी होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो कि अभी कर्नाटक में स्थिति आ गई है, क्या चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराए जाए? चलिए आप ऐसा करा लीजिए, क्या गारंटी है कि फिर किसी को बहुमत मिल जाएगा? तो कितनी बार आप चुनाव कराते रहेंगे? चुनाव खर्चीली प्रक्रिया है, और फिर खर्चीली प्रक्रिया चलिए जो भी होती हो आप कर भी लीजिए, तो राज्य का क्या होगा? राज्य में सरकार ही क्या नहीं रहेगी? अस्थायी सरकार रहेगी, पुरानी मुख्यमंत्री ऐसे ही चलते रहेंगे टेम्परेरी? आप ये तो नहीं कर सकते, ये रिस्क तो नहीं ले सकते। सरकार तो फिर आपको मतलब बनानी ही है। तो अब आप देखिए कि होता क्या है। अब जब यहीं पर राज्यपाल या राष्ट्रपति का विवेक काम करता है, विवेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है संविधान में। अब ये जो विवेक है, अब यहां अगर हम कर्नाटक की बात करें तो दो तरफ आपको दिखाई देगा, और दोनों स्थापित हैं अपने अपने ढंग से, राज्यपालों ने या राष्ट्रपतियों ने निर्णय लिए हैं। पहला तो ये है कि चूंकि बहुमत की सरकार होती है तो एक सामान्य सा सिद्धांत कह लीजिए कि भी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, और उसको फिर ये कहते हैं कि भाई हम ठीक है, देखिए आपको स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन हम आपको इनवाइट करते हैं, आप सरकार बनाइए और फिर आगे चल करके आप जो है बहुमत सिद्ध कर दीजिएगा, बहुमत सिद्ध कर दीजिएगा। तो ठीक है चलिए, लेकिन बहुमत सिद्ध करना उतना आसान नहीं होता है। पार्टी को मालूम होता है कि भाई हमको लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और इनवाइट करने से पहले जो राज्यपाल हैं वो इस बारे में आश्वस्त होने चाहिए कि अगर इन्हें मौका दिया गया तो ये बहुमत सिद्ध कर देंगे, राज्यपाल को लगना चाहिए, राइट? अब राज्यपाल को लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये इनके विवेक के ऊपर है। ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने अपने ढंग से फिर इसकी व्याख्या करते हैं और विश्लेषण करते हैं। बहुत से राज्यपाल और राष्ट्रपतियों ने यह भी कहा है कि भाई कौन सरकार बना सकता है वो प्रमाण प्रस्तुत करे, मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है वही आधार नहीं है, आप सब प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि कौन सरकार बनाएगा, मुजबानी नहीं। प्रमाण का मतलब है कि आप बकायदे लिखित में दीजिए ये हमारे पास सदस्य हैं और ये दूसरी पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तो आपको बुला लेंगे। अब आप देखिए कि कर्नाटक में यही हुआ है। सबसे छोटी पार्टी बनकर क्या है, जनता दल एस सबसे छोटी पार्टी है, तो अब इस छोटी पार्टी को कांग्रेस ने कह दिया कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, हम सपोर्ट करेंगे यानी कि हम आपके साथ हैं, तो दोनों को मिलाकर के बहुमत बन जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल एस ने गवर्नर से कह दिया कि भाई हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, एक ऑफर दे दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो नो डाउट कि उनका भी दावा बनता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, आप उन्हें मौका तो दीजिए, और अगर वो नहीं बना पाएंगे तो ठीक है आप दूसरे को मौका दे दीजिएगा। तो अब ये पूरी तरह से राज्यपाल के अपने विवेक के ऊपर है कि वो इनमें से किन्हें आमंत्रित करते हैं। तो अब देखते हैं मित्रों को किन्हें आमंत्रित करते हैं, फिर अगर जरूरत लगी तो फिर हम इस पर आगे बात करेंगे, राइट? तो आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, जिसके लिए बहुत थोड़ा सा ही वक्त बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पूरा होगा तो हम कल बात करेंगे। देखिए मित्रों, जो सिविल सर्विस का जो चैलेंज है इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। स्टूडेंट 5-5, 7-6 साल तक तैयारी करते रहते हैं और पूरे जोश खरोश से तैयारी करते हैं, वो अपने ढंग से पूरा जी जान लगा देते हैं किताबें रट डालते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ उनको मालूम भी होता है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। दूसरी तरफ आप YouTube चैनल्स में देखिए, जैसे आप अनु कुमारी का ही अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो कह रही है कि वो पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रही थी ऑलमोस्ट, इस बीच में उनकी इतनी लंबी पढ़ाई छूट भी चुकी थी। एक तो यह कि आप कंटिन्यूएशन में चलिए 1.5-2 साल लग करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, राइट। और इस बीच में बकायदे उनका विवाह हुआ, उनके बेटा हुआ, और वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर रही, घर परिवार भी संभाल रही है। इसका मतलब तो यही हम सामान्यतया लगाएंगे कि उनका पढ़ाई से कोई सीधा बहुत ज्यादा संबंध नहीं रह गया। लेकिन ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के उन्होंने फैसला किया कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, अपने बेटे को अपनी मां के पास छोड़ा और पूरी तरह से 1.5-2 साल के लिए अपने आप को तैयारी के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि उन्होंने 1.5-2 साल तैयारी की और रैंक हासिल कर ली, सेकेंड रैंक आ गई, और इतने लंबे गैप के बाद, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति जो मैंने पहली बार बताई आपको, पहली स्थिति में कि 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं और खूब तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ना कुछ चाहिए और पढ़ कुछ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। मित्रों, ये है क्या? देखिए, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस कठिन ही इसलिए है कि ये सिलेबस को रटने की पढ़ाई नहीं है। इनफैक्ट सच पूछे तो ये पढ़ाई ही नहीं है, जिसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मूलतः तैयारी है। और पढ़ाई और तैयारी में फर्क होता है, दोनों एक ही नहीं है। पढ़ना एक बात है, तैयारी करना अलग बात है। कैसे अलग बात है? आप टेस्ट करिए। चलिए, मैं आपको टेस्ट करने का एक लिटमस पेपर प्रोवाइड करता हूं, एक प्रैक्टिकल बताता हूं। इसका प्रैक्टिकल ये है कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, आप जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिए, अपने जो सबसे प्रिय विषय है उसको पढ़ लीजिए, राइट। आपकी तैयारी हो गई, आपको लग रहा है कि मेरा यह विषय तैयार हो गया, ठीक। अब आप अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए और देखिए कि उस विषय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। अब शुरू से ही आप चाहें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहली बात। और चलिए, समझ में आ गया तो अब इसके लिखने के लिए बिंदु मेरे दिमाग में उभर रहे हैं कि नहीं उभर रहे हैं, पॉइंट्स इमर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब मुझे कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, आपको कंटेंट भी मिल गए। थर्ड स्टेज होगा कि अब मैं जो पूछा गया है, याद रखिए, जो पूछा गया है वो नहीं जो आप जानते हैं या आपने जो पढ़ा है, यहीं पर सबसे ज्यादा आप गच्चा खाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं, आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है, नो, जो पूछा गया है। अब आप देखिए कि जो पूछा गया है, आप उस तरीके से जो कुछ भी आप जान रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए हैं, उन्हें प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनकी फ्रेमिंग आपसे हो रही है या नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। अगर फ्रेमिंग हो गई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, और अपना उत्तर लिखने के बाद आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं, या आप और भी आपके अगर परिचित हैं कोई भी है तो आप उनको दिखाइए, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ये सही होता, तब आप मान करके चलिए कि अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ढंग है, आपकी जो दिशा है वो ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई से बात बनेगी नहीं, राइट फ्रेंड्स। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, आगे हम लोग और इस पर बातें करेंगे। मित्रों, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स में मैं आज आपको सिर्फ एक ही क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये अलग तरह का लेख है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें, हो सकेगा तो कल मैं इस पर आप लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन आप पढ़िए, इसमें आपको थोड़ी सी कुछ नई चीजें मिलेंगी देश के बारे में, समाज के बारे में, और जरूर पढ़िएगा प्लीज इसे, और एक ही है तो आप पढ़ ही लीजिएगा कम से कम शगुन करने के लिए कि आज सर ने दिया है तो उसमें से पहले तो आप छांट लेते थे, एक ही दिया है तो अब आपके पास छांटने की कोई समस्या नहीं है, आप इसी को पढ़ लीजिएगा। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अभिषेक सोनी, योगिता, गौरव शर्मा धनबाद झारखंड से, अमित कुमार, रोशनी जाट देवास मध्य प्रदेश से, इमरान खान पिरताला उत्तर प्रदेश से, और प्रियदर्शनी तिर्की राउरकेला उड़ीसा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।